नौवां जापान। जापान यद्यपि प्रशांत महासागर की शक्ति है, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही यह हिंद महासागर में रुचि रखता है। जापान के अर्थतंत्र में इतनी वास्तविक वृद्धि हो चुकी है कि यह विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बाद अब पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन व फ्रांस से ऊपर तृतीय विश्व बड़ी शक्ति के रूप में अपना स्थान बना चुका है। 15 वर्ष पहले यह विश्व को जलयानों द्वारा भेजे जाने वाले माल का आधा स्वयं उत्पन्न करता था। ऑटोमोबाइल उद्योग में इसने पश्चिमी जर्मनी से होड़ स्थापित कर लिया है। इस्पात उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बाद इसका तृतीय स्थान है। विभिन्न प्रकार के उत्पादनों जैसे इलेक्ट्रॉनिक के सामान, चश्मे व रसायन में यह विश्व में सबसे आगे है। इस विशाल औद्योगिक संरचना की उन्नति के पीछे जापान की मिलिट्री शक्ति निहित है। इसके मिसाइल वाहक, उन्नत प्रकार के विध्वंसक, आणविक संभावनाओं तथा मिलिट्री के मानव शक्ति ने इसे प्रशांत बेसिन की एक विशिष्ट शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है, जो एशिया व अफ्रीका की ओर पहले तो आर्थिक रूप से ही अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। जापान की अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख कठिनाई इसका कच्चे माल के लिए लगभग पूर्ण रूप से दूसरे देशों पर निर्भर रहना है, जिसे कि भविष्य में बढ़ते रहने की ही संभावना है। इसका पेट्रोलियम मध्य पूर्व व दक्षिण पूर्व एशिया से आता है। अधिकतर कच्चा लोहा भारत से व तांबा अफ्रीका से आता है। अपने उद्योग की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इसे कपास तथा अन्य रेशे वाले पदार्थों के लिए बाहरी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार केवल कच्चे माल के लिए ही नहीं अपितु बाजार के लिए भी हिंद महासागरीय क्षेत्र जापान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पश्चिम के लिए केप ऑफ मार्ग जो महत्व पश्चिम देशों के लिए है, वही महत्व मलक्का मार्ग का जापान के लिए है, जिसके द्वारा उसे कच्चा माल मिलता रहे तथा तैयार माल खपत के लिए बाहर आता रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका जापान का सबसे निकट का मित्र है। विश्व का शक्ति संतुलन प्रमुखतया इसी पर आधारित है। हिंद महासागर में जापान की सैनिक दृष्टि से शांति संयुक्त राज्य अमेरिका की सक्रियता की वजह से है। यदि फारस की खाड़ी से दक्षिण अफ्रीका का केप मार्ग विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नौसैनिक क्षेत्र है, तो सिंगापुर होते हुए बंगाल की खाड़ी व अरब का समुद्री मार्ग नौसैनिक दृष्टि से पीछे नहीं रह सकता। हिंद महासागर में जापान की आर्थिक उपस्थिति को राजनैतिक व मिलिट्री सुरक्षा की आवश्यकता होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका कब तक इसके लिए ढाल का काम करेगा, यह समय ही बताएगा। 10वां भारत की भूमिका। भारत की भूमिका को समझने के लिए अन्य पड़ोसी राष्ट्रों की राजनैतिक अभिरुचि पर प्रकाश डालना आवश्यक है। महाशक्तियां तथा उनके मित्र राष्ट्र हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति का औचित्य सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा करने के लिए वहां तैनात हैं। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के विकासशील देश महाशक्तियों की हस्तक्षेपवादी नीतियों के कारण उनसे घिरते जा रहे हैं। अपनी गुटनिरपेक्ष स्थिति को बनाए रखने के कारण भारत को दोनों तरफ से खतरा उत्पन्न हो रहा है। अफगानिस्तान में सोवियत सेना के हस्तक्षेप और 1979 में ईरानी क्रांति के बाद से पाकिस्तान सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र से फारस की खाड़ी से होकर जाने वाले समुद्री तेल मार्गों पर नज़र रखी जा सकती है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान अमेरिका की मदद से मकरान तटीय क्षेत्र में एक व्यापक सामरिक ढांचा विकसित कर रहा है। पाकिस्तान ने इस बात का खंडन किया है कि इन दिनों कराची बंदरगाह और पोर्ट कासिम के आधुनिकीकरण के अलावा मकरान तटीय क्षेत्र के जीवानी, ग्वादपुर, आमरा और पासनी इलाकों में स्थित बंदरगाहों और वायु अड्डों का भी तेजी से विकास किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय युद्धनीति अध्ययन संस्थान द्वारा जारी सैन्य संतुलन के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तानी नौसेना में 13,000 सैनिक, 8 पनडुब्बियां, 6 विध्वंसक तथा 19 फ्रिगेट हैं। हाल में हार्पून मिसाइलों के शामिल होने से उनकी शक्ति और भी बढ़ गई है। रक्षा विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की है कि पनडुब्बियों में लगी एक्सरे लेजर युक्त मिसाइल रोधी प्रणाली के फैलाव के लिए अरब सागर एक महत्वपूर्ण स्थान बन सकता है। श्रीलंका भी अमेरिका के मदद पाने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है। इन देशों को अमेरिका के विदेशी सहायता अधिनियम की 571वीं धारा के तहत आतंकवाद से निपटने के लिए मदद दी जाती है। इसके अतिरिक्त श्रीलंका की राजधानी कोलंबो अमेरिका की सातवें बेड़े के जहाज़ों के रुकने का स्थान है। जब अमेरिका ने इस क्षेत्र में स्थायी नौसैनिक उपस्थिति बनाए रखने का निश्चय कर लिया तो उसने 1980 के आरंभ में श्रीलंका से अमेरिकी जहाज़ों के रुकने की सुविधा देने का अनुरोध किया। अमेरिका ने इस अनुरोध के साथ त्रिकोमल्ली तक अपनी पहुंच बनाने देने पर 60 करोड़ डॉलर का एक तेल शोधक कारखाना लगाने का वायदा भी किया। चीन ने अपनी समुद्र नीति में परिवर्तन करके ब्लू वाटर नीति अपना ली है। उसके जहाज महज तट पर गश्त करने के बजाय महासागर में दूर तक जा सकते हैं। नीति में इस परिवर्तन से चीन इस क्षेत्र में दुर्जेय नौसैनिक शक्ति बनाने का प्रयास कर रहा है। हिंद महासागर में विदेशी शक्तियों की बढ़ती हलचल से भारत के लंबे तटीय क्षेत्र को खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके अलावा बंबई हाई क्षेत्र में तेल के कुओं के कारण गुजरात में ओखा से लेकर गोवा तक का क्षेत्र असुरक्षित हो गया है, क्योंकि तेल के ये कुएं आक्रमण के केंद्र बन सकते हैं। इस क्षेत्र में महाशक्तियों के निहित स्वार्थों के कारण समुद्री परिवहन का मार्ग अवरुद्ध होने की भी आशंका है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार भारत के लिए जरूरी है कि वह हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को प्रभावी बनाए तथा वास्तविक युद्ध को रोकने का काम करे। भारत अपने 50,000 नौसैनिकों के साथ यही करने का प्रयास कर रहा है। आज भारतीय नौसेना के शस्त्रागार में पनडुब्बियां, नियंत्रित मिसाइल रोधी तथा पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर भी हैं। 21 अगस्त 1987 को भारतीय नौसेना ने ब्रिटेन से दूसरा विमानवाहक पोत विराट प्राप्त किया। भारत ने पहला विमानवाहक पोत विक्रांत 3 नवंबर 1961 को प्राप्त किया था। विक्रांत और विराट से सी हैरियर विमान उड़ान भर सकेंगे। इससे नौसेना की समुद्र पर अनिवार्य हवाई सहायता देने की क्षमता बढ़ेगी। प्रवेश बिंदु तथा सामरिक महत्व के जलमार्ग। तीन ओर भूखंडों से घिरे इस महासागर में, जिसके सागरीय मार्ग सुस्पष्ट तथा निश्चित हैं, प्रवेश हेतु केवल कुछ प्रवेश बिंदु हैं जो आपातकालीन तथा संघर्ष की स्थिति में अवरोधी बिंदुओं का कार्य करते हैं। इनमें प्रमुख प्रवेश बिंदु महासागर के पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में सिंगापुर व इंडोनेशिया के मध्य, मलक्का जलडमरू मध्य, मलय प्रायद्वीप जावा व सुमात्रा के मध्य, सुंडा जलडमरू मध्य, तिमोर सागर और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण होते हुए सागरीय मार्ग, पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में स्वेज नहर, लाल सागर तथा केप ऑफ गुड होप होकर आने जाने वाले जलमार्ग हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी मार्ग से होकर की जाने वाली सागरीय यात्रा में 3,000 नॉटिकल मील की वृद्धि हो जाती है। इन प्रवेश बिंदुओं में मलक्का जलडमरू मध्य, स्वेज नहर तथा केप ऑफ मार्ग अन्य की अपेक्षा अधिक महत्व के हैं। मलक्का जलडमरू मध्य पूर्व में मलय प्रायद्वीप तथा सिंगापुर एवं पश्चिम में इंडोनेशिया के मध्य स्थित मलक्का जलडमरू मध्य 400 नॉटिकल मील लंबा तथा दक्षिणी छोर पर 20 मील और उत्तरी छोर पर 150 मील चौड़ा है। सिंगापुर तथा इंडोनेशिया के रियाउ द्वीप के समीप सबसे कम चौड़ाई है, केवल 8 मील। जलडमरू मध्य के कुछ स्थानों पर छिछला तथा संकरा होने से बड़े जलयानों, टैंकरों तथा मालवाहक जलयानों के सुरक्षित रूप से आने जाने के लिए इसका तल का मार्जन होता रहता है। एक स्थान पर सबसे कम गहराई 25 फीट की है, जो अंतर समुद्री जलयानों, टैंकरों तथा 2,00,000 टन से अधिक भार के मालवाहक जहाज़ों के लिए खतरनाक है। यह जलमार्ग इसके प्रमुख प्रयोगकर्ता जापान, चीन, संयुक्त राज्य तथा सोवियत संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जलडमरू मध्य माना जाता है। 16 नवंबर 1971 को तीन तटवर्ती राज्यों, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा सिंगापुर ने एक सम्मिलित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया जिनमें कहा गया था कि मलक्का तथा सिंगापुर के जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय जलडमरू मध्य नहीं हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय आवागमन हेतु प्रयोग जरूर होते हैं पर इनकी सुरक्षा का दायित्व तटवर्ती राज्यों पर है, अतः इस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण नहीं होना चाहिए। 22 अक्टूबर 1969 को मलेशिया तथा इंडोनेशिया के इस निर्णय के बाद कि अपनी सागरीय जल सीमा 3 मील से 12 मील बढ़ाई जाए, वाद विवाद उत्पन्न हुआ। अंत में 6 मार्च 1970 को यह निश्चित हुआ कि जहां क्षेत्रीय जल सीमा एक दूसरे की सीमा में पहुंचती हैं, वहां जल की मध्यवर्ती सीमा रेखा निश्चित होनी चाहिए। इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी हो गया। इसे लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। विदेशी जलयान अनवरत आते जाते रहे। यह समस्या तब गहराई जब जापान ने 2 लाख टन से अधिक भार वाले सुपर टैंकरों के आवागमन हेतु हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण प्रारंभ किया। जलडमरू मध्य के बृहद पैमाने पर उपभोक्ताओं ने इस मार्ग पर किसी भी प्रकार के नियंत्रण लगाने का विरोध किया तथा इस बात पर बल दिया कि इसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग समझा जाए। यह जलमार्ग कई देशों के आर्थिक ढांचे के लिए जीवन प्रदायिनी रक्तवाहिनी नाड़ी के सदृश है तथा कम से कम जापान के हृदय की धड़कन है, क्योंकि इसी मार्ग से इसकी कुल आवश्यकता का 90% खनिज तेल पश्चिम एशियाई तेल कूपों से पहुंचता है तथा अफ्रीकी एशियाई देशों से अधिकाधिक व्यापार इसी जलडमरू मध्य से संपन्न होता है। पूर्वी एशिया के इस मार्ग के प्रयोगकर्ताओं में चीन दूसरे स्थान पर है। किसी भी प्रकार इस मार्ग के बंद हो जाने से इन देशों में वास्तविक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए ये देश किसी अन्य सागरीय मार्ग की खोज में लगे हैं। इस दिशा में थाईलैंड के क्रा जलडमरू मध्य द्वारा होकर 50 मील लंबी एक नहर बनाने का आकर्षक प्रस्ताव सामने आया है। इसमें अनुमानित व्यय 1000 से 2000 मिलियन डॉलर का तथा इसे बनाने में लगभग 10 वर्ष का समय लगेगा। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक राजनैतिक, तकनीकी तथा आर्थिक समस्याएं भी उठ खड़ी होंगी जिनका समाधान करके ही इस स्वप्न को वास्तविकता में बदला जा सकता है। साथ ही साथ एक जापानी फर्म ने इसी जलडमरू मध्य से होकर 200 किलोमीटर लंबी खनिज तेल की एक पाइपलाइन का निर्माण करने का प्रस्ताव 1971 में प्रारंभ में रखा था, जिसे थाई सरकार ने अस्वीकार कर दिया। सोवियत राजदूत LI मेंडेलविच 1972 में इस मार्ग से सोवियत नौसेना के हिंद महासागर में आवागमन के अतिरिक्त प्रतिवर्ष 500 मालवाहक व्यापारिक जलयानों के आवागमन के संबंध में वार्तालाप हेतु जकार्ता तथा क्वालालंपुर गए। इससे सोवियत संघ के लिए भी इस मार्ग का महत्व ज्ञात होता है। मलेशिया तथा इंडोनेशिया के मध्य मलक्का जलडमरू मध्य पर नियंत्रण हेतु इसकी सीमा रेखा 3 से 12 मील विस्तृत करने की घोषणा पर संयुक्त राज्य ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। 1972 में संयुक्त राज्य ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन एडमिरल थॉमस जे मूरर ने कहा कि इंडोनेशिया तथा मलेशिया के मलक्का जलमार्ग पर दावे के बावजूद भी यह संयुक्त राज्य अमेरिका को आवाजाही के लिए स्वतंत्रतापूर्वक उपलब्ध रहना चाहिए। ब्रिटेन ने भी इसके तटवर्ती राज्यों को सूचना दी कि यह जलमार्ग उसके विचार से अंतर्राष्ट्रीय है तथा इससे सभी देशों के जलयानों का अनवरत आवागमन उनका अधिकार है। 12 मई 1972 को मलेशिया के प्रधानमंत्री तुन अब्दुल रज्जाक ने पार्लियामेंट में कहा कि सभी विदेशी जलयानों को मलक्का जल डमरू मध्य से जाने से पहले सूचना देनी होगी तथा सभी युद्धपोतों को आश्वासन देना होगा कि वे अच्छे तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों में प्रयुक्त होंगे। अंतः समुद्री पनडुब्बियां जल के ऊपर जाएंगी, नीचे से नहीं। यह संभवतः दिसंबर 1971 में बांग्लादेश युद्ध के समय संयुक्त राज्य तथा सोवियत संघ के प्रशांत महासागर स्थित अपने अपने नौसेना अड्डों से हिंद महासागर में आकर तनाव की स्थिति उत्पन्न करने की प्रतिक्रिया थी। बड़ी शक्तियों की इस मार्ग में सामरिक महत्व की सबसे बड़ी रुचि यह है कि उनके पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित नौसैनिक अड्डों से हिंद महासागर में आने का सबसे संक्षिप्त मार्ग है। संयुक्त राज्य की एक अन्य रुचि यह बताई जाती है कि यह मलक्का जलडमरू मध्य तथा इंडोनेशिया द्वीप श्रृंखला से होकर जाने आने वाले मार्गों में सागर की तली में कुछ ध्वनि यंत्रों को स्थापित करना चाहता है, जिससे कि इधर से आने वाले सोवियत तथा चीनी अंतरसमुद्री पनडुब्बियां की सूचना मिल सके। दक्षिणी चीन सागर तथा इंडो चीन में बढ़ते हुए तनाव से तथा हिंद महासागर की गतिविधियों से मलक्का जलडमरू मध्य तथा महत्वपूर्ण आवागमन संधि हो गया। तदनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीपों की स्थिति के सामरिक महत्व में भी वृद्धि हो गई। केप ऑफ गुड होप मार्क दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण तटवर्ती अंतर्राष्ट्रीय सागरी मार्ग का महत्व समझकर ब्रिटेन ने 1975 में केप टाउन से 30 मील दक्षिण अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी भाग में केप प्रांत के चरणों में दक्षिणी अटलांटिक तथा हिंद महासागरीय जल को अलग करने वाले स्थान साइमंस टाउन में एक नौसैनिक अड्डा स्थापित किया। 30 जून 1955 को ब्रिटेन तथा दक्षिण अफ्रीका की सरकारों के मध्य इस सागरीय मार्ग के महत्व के संबंध में यह समझौता हुआ कि युद्ध की स्थिति में सभी देशों में शांति तथा सुरक्षा हेतु सागरीय आवागमन का बड़ा महत्व होता है तथा केप मार्ग इसकी सुरक्षा प्रदान करेगा। इसका नाम साइमंस टाउन समझौता रखा गया। जून 1967 में 8 साल के लिए स्वेज नहर बंद हो जाने के बाद मोजाम्बिक जलमार्ग होकर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय जलयानों द्वारा इसके गहन प्रयोग से इसका महत्व ज्ञात हुआ। साथ ही इसने अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर हिंद महासागर के पश्चिमी आधे भाग में स्थित द्वीपों के समूह सोकोत्रा, सेसेल्स, मॉरिशस, मालागासी, ट्रामलिन, रियूनियन, कोमोरो आदि की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो संक्रमण बिंदु, ट्रांजिट पॉइंट्स तथा यातायात संबंधों व नौसैनिक अड्डों के संभावित क्षेत्र साबित हो सकते थे, हो रहे हैं। 1975 में स्वेज नहर खुलने के बाद भी इस मार्ग का महत्व कम नहीं हुआ। अभी भी वायुयान वाहक पेट्रोलियम टैंकर तथा अन्य विशाल चलयान जो स्वेज मार्ग से नहीं निकल सकते इसी मार्ग का प्रयोग करते हैं। दक्षिणी अफ्रीकी सरकार ने सागरीय मार्ग की सुरक्षा हेतु साइमंस टाउन समझौते को अत्यंत आवश्यक समझा। जून 1970 में ब्रिटेन में कंजर्वेटिवों के सत्ता में आने के बाद सागरीय मार्ग में के संदर्भ में इस समझौते पर पुनः विचार हुआ, विशेषकर पेट्रोलियम लाने वाले सागरीय मार्ग के संबंध में। विदेश सचिव सर अलेक डगलस होम ने कहा कि ब्रिटेन तथा अन्य संबंधित देश सागरीय यातायात की महत्ता को अत्यंत महत्वपूर्ण समझते हैं, परंतु देश की सुरक्षा नीति पर पुनर्विचार करके विवादग्रस्त साइमंस टाउन समझौता 16 जून 1975 को रद्द कर दिया गया। साइमंस टाउन समझौता रद्द होने के बाद दक्षिणी अफ्रीकी सरकार हिंद महासागर में किसी भी प्रकार के सैन्य सहयोग के लिए इच्छुक है। इसने संयुक्त राज्य को साइमंस टाउन तथा डर्बन नौसैनिक अड्डों तथा अन्य स्थानों का प्रयोग करने की सुविधाएं प्रदान कर दिया है। एक अत्यंत गुप्त कई मिलियन डॉलर लागत का प्रोजेक्ट एडवोकाट नामक यातायात संचार तथा निरीक्षण स्टेशन सिल्वर माइन के समीप के पर्वतों में साइमंस टाउन नामक स्थान पर स्थापित किया गया। यह देश की आवश्यकताओं से कहीं अधिक क्षमता का है। इसके लिए नाटो से संयंत्रों की प्राप्ति हुई तथा यह यातायात के निरीक्षण हेतु नाटो द्वारा गुप्त भाषा का प्रयोग करता है। यह 5000 नॉटिकल मील की दूरी तक दक्षिणी ध्रुव से लेकर बंगाल की खाड़ी व अरब सागर के सभी हवाई तथा सागरीय यातायात का प्रत्येक मिनट का रिकॉर्ड नाटो हेडक्वार्टर वाशिंगटन को भेजता रहता है। 1970 के मध्य में संयुक्त राज्य तथा ब्रिटेन को मिलाकर कुछ पश्चिमी देशों ने नाटो संचार को कर्क रेखा से उत्तर तक विस्तृत करने का सुझाव रखा। कथित उद्देश्य यह था कि केप ऑफ गुड होप होकर जाने वाली पश्चिमी सागरीय मार्ग की विशेषकर पेट्रोलियम के आपूर्ति मार्ग की काल्पनिक सोवियत धमकी से सुरक्षा, परंतु कनाडा तथा कई अन्य यूरोपीय देशों ने नाटो के नाम पर किसी भी अन्य विस्तार का इस आधार पर विरोध किया कि हिंद महासागर में नाटो की उपस्थिति के लिए डिगो गार्सिया में सैन्य सुविधाओं तथा संयुक्त राज्य ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी नौसैनिक टास्क फोर्स का विस्तार पर्याप्त है। दक्षिण अफ्रीका तथा उसके मित्र यह तर्क देते हैं कि केप मार्क सामरिक महत्व का जलमार्ग है जो पश्चिमी जीवन रेखा की धुरी सदृश है। साइमनस्टाउन दक्षिणी गोलार्ध का जिब्राल्टर है जो अफ्रीका के दक्षिणी छोर के सागरी मार्ग पर नियंत्रण रखता है। स्वेज नहर खुलने के बाद भी यूरोप का लगभग 70% पेट्रोलियम इसी मार्ग से जाता है। स्वेज नहर लाल सागर मार्ग फर्डीलैंड डी लेसेप्स द्वारा निर्मित भूमध्य सागर पर स्थित पोर्ट सईद को लाल सागर पर स्थित स्वेज से जोड़ने वाली 103 मील लंबी, कहीं कहीं 120 गज चौड़ी स्वेज नहर 1869 में खुली। यह जलमार्ग जून 1967 में 6 दिन के अरब इजराइल युद्ध के समय से बंद कर दिया गया था, जिसे 5 जून 1975 को पुनः खोला गया। यह जलमार्ग आर्थिक तथा सामरिक महत्व की नाड़ी सदृश है। जून 1967 से पहले 265 मिलियन टन से अधिक विश्व के सागरीय व्यापार का 14% भार की सामग्री इस नहर द्वारा गुजरी, जिसमें 75% केवल खनिज तेल था। 1977 में नहर द्वारा औसतन 55 जलयान प्रतिदिन गुजरा, जिससे प्रतिदिन 1.25 मिलियन डॉलर की आय हुई। 1967 में नहर बंद हो जाने के पहले का दुगुना भार ढोया जाने लगा। इस प्रकार 1977 में इधर से 20,000 से अधिक जलयानों का आवागमन हुआ। कुल माल में अकेले खनिज तेल 350 मिलियन टन था। 1979 में प्रतिदिन 70 जलयान इधर से गुजरे। अगस्त 1980 तक नहर से प्राप्त शुल्क 400 मिलियन डॉलर तक पहुंचा। वर्ष के अंत तक इसके लिए 645 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की आशा की जाने लगी, अर्थात औसतन 1.8 मिलियन डॉलर प्रतिदिन की आय हुई। जापानी सहायता से कैनाल अथॉरिटी इस नहर को चौड़ा तथा गहरा कर रही है। इससे विशाल टैंकरों तथा भारी मालवाहक जलयानों का आवागमन संभव हो सके। जलमार्ग के समीपस्थ दक्षिण तथा पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, भूमध्य सागर तथा काला सागर क्षेत्रों के लिए खनिज तेल के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों के लिए नहर का पुनः खुलना तथा चौड़ा होना अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हुआ। इससे 1967 में नहर बंद हो जाने के उपरांत उन देशों को जिनका सागरीय मार्ग लंबा हो गया परंतु राहत मिली। फलस्वरूप यातायात की लागत कम हुई तथा भार में 30% की वृद्धि भी हुई। यूरोप तथा अरब सागर के पत्तनों की यात्रा 35 दिन के बदले 15 दिन में ही पूरी होने लगी। हिंद महासागर के उत्तरी पश्चिमी तटवर्ती भूभाग सोवियत संघ की दक्षिणी पश्चिमी सीमा से संलग्न है तथा राजनीतिक उथल फुथल के क्षेत्र हैं। साथ ही यह विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक संचित राशि के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं। अरब ने 1973 में पश्चिमी एशिया से युद्ध के बाद इजरायली जलयानों पर अक्वाबा की खाड़ी से लाल सागर के दक्षिणी छोर पर स्थित बाब अल मैंडेब होकर आने जाने पर नियंत्रण लगा दिया। बड़ी नौसैनिक शक्तियों, संयुक्त राज्य, ब्रिटेन, फ्रांस तथा सोवियत संघ ने नहर के खुलने से बहुत बड़े सामरिक महत्व का लाभ प्राप्त किया है, क्योंकि इससे उनके युद्ध पोतों की घरेलू पत्तनों से दक्षिण, दक्षिण पूर्व यूरोप, भूमध्य सागर तथा काले सागर के नौसैनिक अड्डों तक की यात्रा काफी संक्षिप्त हो गई है। इससे हिंद महासागर स्थित उसके नौसैनिक अड्डों को अतिशीघ्र अतिरिक्त सहायता तथा फोर्स पहुंचाया जा सकता है। फ्रांस, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य ने पश्चिमी एशिया के सागर तटों पर स्थित आने नौसैनिक अड्डों को इसी मार्ग द्वारा बार बार टास्क फोर्स भेजकर सैन्य तथा नौसैनिक शक्ति में वृद्धि की है। रूसियों ने भी इस जलमार्ग के खुल जाने से काफ़ी सामरिक तथा आर्थिक महत्व का लाभ उठाया है, क्योंकि इससे उनके जलयानों का हिंद महासागर व सुदूर पूर्व के पत्तनों तक का मार्ग काफ़ी छोटा हो गया है। इससे टर्की के उत्तर पश्चिम स्थित दार्डेनेल्स तथा हिंद महासागर के मध्य लगभग 6000 मील की दूरी की बचत हुई है। सोवियत व्यापारिक जलयानों को भी इससे निश्चित रूप से बहुत अधिक लाभ पहुंचा है। स्वेज नहर हिंद महासागर तथा मलक्का जल डमरू मध्य द्वारा होकर आने वाला सागरीय मार्ग यूरोप व सोवियत संघ के सुदूर प्रांतों के मध्य बड़े महत्व का सागरीय संबंध स्थापित करता है। क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया का विशेष महत्व इसकी खनिज तेल संसाधन संपन्नता के कारण है। महाशक्तियाँ इसी स्वार्थवश इसे सैनिक शक्ति द्वारा अनिवार्यतः रक्षा का क्षेत्र मानती हैं। पाकिस्तान दक्षिण पश्चिम एशिया के देशों में से एक होने के कारण तथा अपने संपूर्ण घरेलू उत्पादन का लगभग 1/8% खाड़ी क्षेत्र से प्राप्त करने के कारण स्वयं को दोनों ही प्रदेशों में रखता है। साथ ही यह किसी समय केंद्रीय संधि संगठन सेंटो का सदस्य भी रह चुका है तथा इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय कमांड के वैध अधिकार क्षेत्र में आता है। दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया में नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब तथा यमन को छोड़कर शेष सभी राष्ट्र उपनिवेश रह चुके हैं, जो स्वतंत्र होने के उपरांत संचार एवं आवागमन में विकास द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास तथा राष्ट्र सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया के दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ के निवासियों में राजनैतिक चेतना की जागृति के परिणाम स्वरूप मूल अधिकारों तथा उच्च जीवन स्तर की अवाप्ति की आकांक्षा का आविर्भाव हो रहा है। यूरोपीय राष्ट्रों के विकास प्रतिरूप को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि यह विकास बिना क्रांति के संभव नहीं है। इस संदर्भ में आने वाले 2-3 दशकों में इन नवीन राष्ट्रों की राष्ट्रीय एकता तथा राजनैतिक चेतना की अशांति पर नियंत्रण करने की क्षमता की परीक्षा होनी है। ध्यातव्य है कि दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया में कुछ आधारभूत अंतर पाया जाता है। विश्व की 20% जनसंख्या का प्रदेश दक्षिण एशिया, जो दो ओर से नाभिकीय शक्ति रखने वाली महान शक्तियों से संलग्न है तथा जिसका एक संबंधित देश संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय कमांड के अंतर्गत है, विश्व के सैनिक मद में व्यय का केवल 1.2% व्यय करता है। दूसरी ओर दक्षिण पश्चिम एशिया का सैनिक मद में व्यय विशाल है। एक दशक से अधिक समय से सऊदी अरब, इराक तथा ईरान विकासशील देशों में सैनिक व्यय में सबसे आगे रहे हैं। इतना ही नहीं, दक्षिण पश्चिम एशिया में तकनीकी दृष्टि से कुछ अत्यंत उन्नत कोटि के हथियारों का प्रवेश भी हो चुका है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान समय में दक्षिण पश्चिम एशिया तथा इससे संलग्न होने के कारण दक्षिण एशिया के देश भी अत्यधिक अशांति विप्लव के क्षेत्र हो रहे हैं, जैसा कि ईरान इराक युद्ध जो पिछले 5 वर्षों से चल रहा है, अफगानिस्तान में राजद्रोह तथा कुछ अन्य देशों के आंतरिक उपद्रवों से स्पष्ट है। इस समय दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया के सभी राष्ट्र गुटनिरपेक्ष हैं, परंतु विगत इतिहास तथा नवीन शीत युद्ध के संदर्भ में यह गुटनिरपेक्षता एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में भिन्न है। सेंटो तथा प्रथम शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप 1959 में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पाकिस्तान में हुआ प्रशासनिक समझौता पुनर्जीवित हो रहा है। फारस की खाड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य पूर्व नौसैनिक शक्ति के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित कर चुका है। जैसा कि पिछले बताया जा चुका है कि हाल ही में लगभग 1 वर्ष पूर्व वह यहीं फारस की खाड़ी के समीप कैरियर टास्क स्थापित कर चुका है। इस प्रकार दक्षिण एशिया की तुलना में दक्षिण पश्चिम एशिया द्वितीय शीत युद्ध में महाशक्तियों के संघर्ष का एक अधिक नाजुक क्षेत्र बन सकता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत एवं श्रीलंका। अफगानिस्तान में दिसंबर 1979 में हुए सोवियत हस्तक्षेप का विवेचन द्वितीय शीत युद्ध के परिप्रेक्ष्य में कुछ विशेष तथ्यों को ध्यान में रखकर करना अधिक समीचीन होगा। ये तथ्य हैं, पहला, इसके पश्चिम समीपवर्ती देश ईरान में हुई क्रांति, दूसरा, ईरान इराक युद्ध के परिणाम स्वरूप खनिज तेल की आपूर्ति में कमी, एवं तीसरा, प्रदेश के कई देशों की नेतृत्व संबंधी अस्थिरता। 1978 में अभिसामयिक हथियारों के स्थानांतरण तथा हिंद महासागर में नौसैनिक स्थापन को सीमित करने के विषयों पर वार्ता भंग होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने कैरियर टास्क फोर्स को निरंतर कार्यरत रखने का निर्णय लिया तथा उत्तरी अरब सागर में एक त्वरित तैनाती सेना RDF स्थापित करने की घोषणा की। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के अंतर्गत आने वाले देशों ने भी यहां यूरो मिसाइल स्थापित करने की योजना बनाई। लगभग उसी समय ईरान, अफगानिस्तान, दक्षिण यमन तथा सोमालिया में सत्ता परिवर्तित हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका के डिगो गार्सिया की सैनिक सुविधाओं को और अधिक आधुनिक तथा उन्नत करने, पाकिस्तान को शस्त्रशास्त्रों से सज्जित करने, हिंद महासागर परिमंडलीय देश केनिया, सोमालिया तथा ओमान में सैनिक अड्डे स्थापित करने तथा दक्षिण ईरान पर अधिकार करने की संभावनाओं की होड़ में सोवियत संघ ने प्रथम बार सोवियत ब्लॉक से बाहर आकर अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, जिसमें उसकी उष्ण जल के एकमात्र पत्तन की सुविधा प्राप्त करने का उद्देश्य भी निहित था। ऐसी ही परिस्थिति में भारत की भूमिका प्रारंभ होती है। उपमहाद्वीप में 1972 में हुई शिमला संधि एक परिवर्तन बिंदु थी। संधि के अनुसार भारत एवं पाकिस्तान के द्विपक्षीय रूपरेखा के अनुसार आपसी झगड़ों के निपटारे के लिए शक्ति का प्रयोग न करने का निर्णय लिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री भुट्टो भारत के साथ अपने संबंध सुधारने तथा कश्मीर के संबंध में एक परस्पर स्वीकार्य समझौता कर चाहते थे, किंतु विरोधात्मक विकास यह हुआ कि अपने प्रधानमंत्री नेतृत्व काल में ही उन्होंने भेंट स्वरूप लगभग $1 अरब मूल्य के हथियार चीन से तथा अरब मुद्रा द्वारा इतने ही मूल्य के हथियार यूरोप से प्राप्त किया। यद्यपि स्पष्ट रूप से उस समय हथियारों के होड़ की कोई विशेष बात न थी, तथापि पाकिस्तान ने अरब संसार से अपने संबंध सुधारने तथा इस्लामी देशों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास की कड़ी में इस योजना को क्रियान्वित किया। श्री भुट्टो के ही समय में भारत तथा पाकिस्तान के बीच के संबंधों में अनवरत सुधार आता गया। 1976 में दोनों देशों में राजदूतों की नियुक्ति हुई तथा 1965 से बाधित हुआ व्यापार पुनः प्रारंभ हुआ। 1978 में सलाल बांध संधि पर हस्ताक्षर हुआ। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के उपरांत भारत पाक संबंधों के सुधार में उस समय और प्रगति हुई जब भारत ने पाकिस्तान को अपनी पूर्वी सीमा से निश्चिंत रहने का सैद्धांतिक रूप से आश्वासन दिया। भारत की पाकिस्तान से युद्ध विराम संधि केवल इसलिए ही नहीं कि पाकिस्तान पूर्वी सीमा से निश्चिंत होकर अपनी सेनाएं पश्चिमी सीमा पर नियुक्त कर सके, अपितु इसलिए भी महत्वपूर्ण थी कि इससे वहां की सरकार और दृढ़ तथा शक्तिशाली हो तथा इसकी क्षमता में वृद्धि हो, जिससे यह पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान स्थित मुजाहिदीन क्रियाकलापों के विरुद्ध सोवियत संघ के प्रयासों को निष्फल कर सके। इसके अतिरिक्त अमेरिकी गुटनिरपेक्ष देशों के अध्यक्ष भारत से चाहते थे कि वह अपने प्रभाव एवं सोवियत संघ से अपने मित्रतापूर्ण संबंधों का प्रयोग करके सोवियत संघ को अपनी सेनाएं अफगानिस्तान से वापस बुलाने हेतु मना कर सके। इस संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को कुछ सैनिक आपूर्ति हेतु तैयार हो गया तथा ऐसा विश्वास दिलाना चाहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए सैनिक सामग्री हेतु सोवियत संघ का एक विकल्प स्रोत तथा मित्र हो सकता है। इस संबंध में अनेक प्रयासों के उपरांत लगभग एक मास पूर्व सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से कई चरणों में सैनिक की वापसी प्रारंभ करके इस दिशा में प्रशंसनीय कदम उठाया है। पाकिस्तान निरंतर अमेरिका के सैन्य सुविधाएं पाता रहा है। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के प्रवेश तथा ईरान में 1979 में हुई क्रांति के बाद से पाकिस्तान को अमेरिकी कूट योजना विशेषज्ञ अग्रिम पंक्ति का राष्ट्र मानने लगे हैं तथा पाकिस्तान को अमेरिकी सेंट्रल कमान में एक अग्रगामी अड्डे का दर्जा दिया है। रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स और सेंटकॉम के अभियानों हेतु मकरान के तटवर्ती क्षेत्र में सैन्य अड्डा विकसित किया जा रहा है तथा कराची पोताश्रय एवं कासिम बंदरगाह और सिवनी ग्वाडर उर्मारा व पसनी के बंदरगाहों को विकसित किया जा रहा है। मौरीपुर का वायु अड्डा सन 1983 से ही P-3 ओरियन टोहक वायुयानों द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा है। कुछ समर विद्या विशारदों का मानना है कि अमेरिकी भूस्थापित इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस डाटा इकट्ठा करने के बदले ही पाकिस्तान को $4.02 बिलियन की आर्थिक सैनिक सहायता दे रहा है। श्रीलंका ने अमेरिका को लगभग 100 तेल स्टोरेज टैंक त्रिकोमाली बंदरगाह पर बनाने हेतु 1981 में टेंडर दे रखे थे। साथ ही अमेरिका ने $600 मिलियन का सहायता प्रस्ताव श्रीलंका के सम्मुख रखा था, जिसके बदले ये त्रिकोमाली बंदरगाह का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन श्रीलंका में भारत के सैनिक हस्तक्षेप के बाद से स्थिति अभी पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाई है। खाड़ी क्षेत्र ईरान इराक। युद्धरत राष्ट्रों ईरान और इराक के मध्य 22 सितंबर 1980 को युद्ध प्रारंभ हुआ, अर्थात पिछले 7 वर्षों से मध्य पूर्व के इन दो तेल निर्यातक राष्ट्रों के मध्य युद्ध चल रहा है। यह इस युद्ध के एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। प्रायः पर्यवेक्षकों ने सत अल अरब जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद को ही ईरान इराक युद्ध का कारण माना है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद एक कारण हो सकता है, परंतु एकमात्र नहीं। सत अल अरब नामक जलडमरू मध्य दजला और फरात नदियों को जोड़ता है। अपने निम्न प्रवाह में लगभग 50 मील तक यह जलडमरू मध्य दोनों राष्ट्रों के मध्य सीमा का कार्य करता है। यह जलडमरू मध्य क्षेत्र की भू राजनीति को देखते हुए आर्थिक और राजनैतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। अतः जिसके नियंत्रण में यह जलडमरू मध्य रहेगा, उसकी स्थिति निश्चय ही दूसरे से अधिक शक्तिशाली होगी। मार्च 1975 में अल्जीयर्स में दोनों राष्ट्रों के मध्य यह समझौता हुआ कि जलडमरू मध्य की मध्य रेखा को दोनों राष्ट्र अपनी सीमा मानेंगे। उस समय तो इराक ने यह समझौता स्वीकार कर लिया था, पर बाद में पूरे जलडमरू मध्य पर अपना एकमात्र अधिकार चाहने लगा। फारस की खाड़ी क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता का इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कारण वह ऐतिहासिक विरोध है जो क्षेत्र के पूर्वी तट पर स्थित ईरानियों और पश्चिमी किनारे पर स्थित अरबों के मध्य वर्षों से विद्यमान है। यह विरोध आंशिक रूप से जातीय और भाषाई है और आंशिक रूप से धार्मिक, क्योंकि ईरानी जनसंख्या का अधिकांश भाग शिया मुस्लिम है, जबकि अधिकांश अरब राष्ट्र सुन्नी बहुसंख्या वाले हैं। जब तक क्षेत्र में बाह्य शक्ति का प्रभुत्व था, तब तक इस विरोध का कोई विशेष महत्व नहीं था, लेकिन क्षेत्र से बाह्य शक्ति के बहिर्गमन के साथ ही इस ऐतिहासिक विरोध ने क्रमशः तनाव और कालांतर में संघर्ष का रूप ले लिया। विवादों और इराक की उग्रवादी विदेश नीति ने इस संघर्ष को पर्याप्त हवा दी। 7 वर्षों से पश्चिमी एशियाई तेल उत्पादक इस्लाम धर्मावलंबी धनी राष्ट्र ईरान इराक आधुनिक संवेदनशील स्वचालित कंप्यूटर संचालित रासायनिक वैज्ञानिक आग्नेय अस्त्र शस्त्रों रडारों कंप्यूटरों प्रक्षेपास्त्रों बम वर्षक विमानों हेलीकॉप्टरों, बारूदी जल सुरंगों, बमों, कोलों, सामरिक जलपोतों से सागर और भूमि का युद्ध कर रहे हैं। 1981 से ईरान इराक युद्ध खाड़ी युद्ध के रूप में विध्वंस, रक्तपात और मानवीय संकट के रूप में विश्व राष्ट्रों और संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चित होता रहा है। 1983 से युद्ध में तेल उत्पादन केंद्रों के विनाश के आर्थिक युद्ध में सीमित होकर तेल युद्ध के रूप में प्रसिद्ध होता रहा है। 1984 से 1987 तक तेल उत्पादक राष्ट्रों के तेल निर्यात के जलमार्गों और तेलवाहक जलपोतों के नियंत्रण और स्वामित्व के युद्ध में परिवर्तित और विकसित होकर टैंकर युद्ध के रूप में विश्व परिचर्चा में प्रसिद्ध और प्रचलित हो रहा है। 1987 मई से, विशेषकर अगस्त सितंबर से, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की सक्रिय असक्रिय और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साझेदारी से इराक ईरान युद्ध धीरे धीरे जटिलताओं और प्रसारों के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्थायी समिति सागर युद्ध का रूप ले रहा है। पर्यवेक्षकों के अनुसार पिछले 7 वर्षों में इन युद्ध के चलते लगभग 13 लाख लोग अपना जीवन गंवा चुके हैं। दोनों पक्षों को लगभग $75 बिलियन की आर्थिक क्षति हो चुकी है। ईरान इराक युद्ध का एक और प्रकार से विशिष्ट है। युद्ध के दौरान दोनों संघर्षरत राष्ट्रों ने एक दूसरे के सैनिक ठिकानों के साथ औद्योगिक ठिकानों, मुख्यतः तेल ठिकानों पर भी आक्रमण किया। खास तौर से इराक कई बार ईरान के खर्ग तेल संयंत्र पर आक्रमण किए जाने का उद्देश्य यही माना जा सकता है कि वह सैनिक, नागरिक और औद्योगिक ठिकानों पर एक साथ आक्रमण करके न केवल प्रतिपक्षी को सैनिक दृष्टि से कमजोर करना चाहता है, बल्कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके जनमानस के मनोबल को भी खंडित करना चाहता है। विश्व के किसी भी अन्य भाग में लड़े जा रहे अन्य किसी भी संघर्ष की भांति ईरान इराक संघर्ष में भी महाशक्तियों की अपनी अपनी रुचियां और भूमिकाएं हैं। दोनों ही महाशक्तियों द्वारा संघर्षरत राष्ट्रों को हथियार बेचे जाते रहे हैं। पहले यह समझा गया था कि अमेरिका ने मात्र इराक को हथियारों की बिक्री की है, परंतु ईरान कंट्रास घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति रीगन द्वारा छिपाकर ईरान को भी हथियारों की आपूर्ति की गई। इराक तो सोवियत रूस का मित्र घोषित है। सोवियत रूस के साथ इराक ने शांति और मैत्री की संधि पर भी हस्ताक्षर किए हैं। सऊदी अरब, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात खुले तौर से इराक को सहयोग और समर्थन दे रहे हैं, जबकि सीरिया और लीबिया ईरान का समर्थन कर रहे हैं। मध्य पूर्व, इसराइल, यह विश्व का सतत संघर्ष संभाव्य क्षेत्र है। यदि कोई प्रादेशिक संघर्ष महाशक्तियों के परस्पर टकराव में परिवर्तित हो सकता है, तो इसराइल के यहूदी और उनके अरब पड़ोसियों का क्षेत्र सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित करता है। खाड़ी क्षेत्र की तरह मध्य पूर्व में भी महाशक्तियों का प्रमुख सामरिक स्वार्थ खनिज तेल निर्यात की सुरक्षा तथा दूसरों को इसकी आपूर्ति में बाधक होने से रोकना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका इसराइल की अर्थव्यवस्था तथा सैनिक आपूर्ति नियत करता है। दोनों देशों के मध्य हुई संधि के अनुसार मध्य पूर्व में होने वाली किसी भी सैनिक कार्यवाही के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका इसराइल को मंच की भांति प्रयोग कर रहा है। अमेरिका के इसराइल में कई महत्वपूर्ण सामरिक अड्डे बने हुए हैं। ये हैं रमान, उबडा एवं मलहला, जिन्हें बनाने में अमेरिका ने $100 मिलियन खर्च किए हैं। इसके साथ ही अमेरिका इसराइल के साथ स्टार वार परियोजना का भागीदार भी बना हुआ है, जिसमें इसराइल का रिमोसन अड्डा प्रयोग किया जाएगा। वास्तव में इसराइल का अमेरिकी पश्चिम एशियाई भूकूट योजना में अति महत्वपूर्ण स्थान है तथा इसराइल का अस्तित्व ही अमेरिकी समर उद्देश्यों पर टिका हुआ है। सीरिया, दूसरी ओर सीरिया को सोवियत संघ इससे कहीं अधिक सैनिक सहायता प्रदान करता है। 1982 में लेबनान युद्ध के बाद से सोवियत संघ ने सीरियाई सेना को इस हद तक पुनर्सुसज्जित कर दिया है कि यहाँ उन्नत कोटि की क्षेप्यास्त्र प्रणाली तक स्थापित हो गई है, जो कि पहले केवल पूर्वी ब्लॉक में ही उपलब्ध थी। इसे केवल सोवियत सैन्य सलाहकार व्यवस्थित करते हैं एवं चलाते हैं। सामान्यतया ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसराइल के पास नाभिकीय हथियारों का एक छोटा भंडार है, जबकि सीरिया स्थित सोवियत क्षेप्यास्त्र अभी सामयिक तथा नाभिकीय दोनों प्रकार के हथियारों को प्रक्षेपित कर सकते हैं। 1985 के प्रारंभ में पूर्वी लेबनान स्थित बेका घाटी से इसराइल के पीछे हटने के बाद इजरायली सेना सीरिया के सम्मुख स्थित गोलन पहाड़ियों पर जम गई। गोलन जैसे क्षेत्र में दो सेनाओं के जमाव से यह क्षेत्र तनावग्रस्त हो गया है तथा यहाँ एक छोटा संघर्ष या दुर्घटना भी युद्ध के रूप ले सकती है। सऊदी अरब। अमेरिकी भूकूट योजना का पश्चिम एशियाई केंद्र बिंदु सऊदी अरब है। अमेरिका ने सऊदी सेनाओं की ट्रेनिंग तथा साज सामान उपलब्ध कराने से लेकर हर प्रकार की सुविधाएं विकसित कर रखा है। खाड़ी के तट पर अमेरिका द्वारा बनाया गया दहरान वायु अड्डा अमेरिकी अवाक्स एवं अन्य विमान प्रयुक्त करते हैं। अमेरिका 4 नए वायु अड्डों, 2 नौसैनिक अड्डे तथा 3 स्थलीय अड्डे और सऊदी सेनाओं के लिए एक सैन्य अकादमी बना रहा है, जिसमें कुल $2100 मिलियन का खर्च आएगा। अमेरिका की कोर ऑफ इंजीनियर 2 नौसैनिक अड्डे बना चुकी है, जिन पर $2 बिलियन खर्च आया है। इन्हें सिर्फ अमेरिकी नौसेना प्रयोग करेंगी। ये अड्डे हैं, पहला लाल सागर में जिद्दा के पास तथा दूसरा फारस की खाड़ी में जुबैला के पास। इसके साथ ही रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स के लिए यानबू में तेल भंडारण सुविधा उपलब्ध है। सऊदी अरब में तो पाकिस्तान के लगभग 20,000 जवान भी उपस्थित हैं। सन 1981 से ईरान इराक युद्ध के दौरान खाड़ी क्षेत्र में हो रही कार्यवाहियों की टोह लेने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब को अमेरिकी पायलटों द्वारा चलाए जाने वाले 4 अवाक्स विमान उधार के तौर पर दे रखे हैं। साथ ही 3KC-135 और 1KC-10 टैंकर ईंधन आपूर्ति हेतु लगाए हैं। अब यह तय हो चुका है कि अमेरिका सऊदी अरब को 5 अवाक्स विमान बेचेगा, जिनकी कुल कीमत $8.5 मिलियन होगी। सऊदी अरब में अमेरिका के कुल 1,000 वर्दीधारी सैनिक तथा 1,200 पेंटागन के सिविलियन कर्मचारी हैं। वास्तव में सऊदी अरब इस क्षेत्र का अमेरिका का सबसे बड़ा गढ़ है। अफ्रीका में मिस्र। निर्गुट आंदोलन के इस संस्थापक राष्ट्र ने भी अंततः अमेरिका के सम्मुख घुटने टेक दिए हैं और 1980 में काहिरा के निकट केन्या के 2 वायु अड्डों तथा लाल सागर में रास बनास के 9 सैनिक अड्डों को अमेरिका को खाड़ी क्षेत्र में किसी आपत्तिकाल में प्रयोग करने हेतु उपलब्ध कर दिया है। अमेरिका ने मिस्र के साथ ब्राइट स्टार नामक युद्धाभ्यास भी इसीलिए किया था कि लीबिया को डराया धमकाया जा सके। अल अहरम नामक काहिरा स्थित समाचार पत्र ने इस आशय की खबरें अगस्त 1987 में छापी थी कि अमेरिका और मिस्र दोनों मिलकर लीबिया पर आक्रमण की योजना बना रहे हैं। सूडान। अमेरिका सूडान को पश्चिमी एशिया तथा खाड़ी क्षेत्र के सैन्य अभियानों हेतु महत्वपूर्ण सामरिक चौकी समझता है, इसलिए उसने वर्ष 1985-86 के दौरान सूडान को $200 मिलियन की सहायता दी। साथ ही मिस्र को दिए गए 2 अवाक्स टोही विमानों को भी नियमित उड़ान सूडान के ऊपर भरने को कह दिया, ताकि लीबिया सूडान को सैनिक दबाव में न रख सके। राष्ट्रपति निमेरी के सत्ताच्युत होने के बाद इस बाद स्थिति अमेरिका के कुछ प्रतिकूल हो रही है, परंतु अभी तक कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया है। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका की खोज के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, बेल्जियम, स्पेन, इटली आदि विभिन्न औपनिवेशिक शक्तियों ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। सदियों के शोषण के उपरांत यहाँ के निवासियों में क्रांति की जो लहर उठी उससे इसके 57 देश तो स्वतंत्र हो गए, पर दक्षिण अफ्रीका तथा नामीबिया के हृदय में यह अग्नि सुलगती ही रही। ये स्वतंत्र नहीं हो सके। दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में 1948 से विभिन्न नृ जातियों के विकास हेतु अपार्थीड नामक एक नीति की घोषणा की गई, जिसके अनुसार स्वदेशोत्पन्न अश्वेत अफ्रीकी बहुसंख्यकों लगभग 1,80,00,000 तथा सवर्ण मिश्रित एशियाई अल्पसंख्यक नृ जाति लगभग 30,00,000 की तुलना में श्वेत यूरोपीय अल्पसंख्यकों लगभग 45,00,000 के सुविधाओं की सुरक्षा हेतु होती है। सभी अश्वेतों को आधिकारिक रूप से निम्न कोटि की सामाजिक सेवाएं वाले क्षेत्र में अलग रहना होता है। उन्हें मौलिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। सदैव परिचय पत्र साथ रखना होता है तथा नृ जातियों में परस्पर विवाह जुर्म होता है। 1959 में गणतंत्र के अंतर्गत स्वदेशोत्पन्न अश्वेत अफ्रीकियों के लिए स्वतंत्र बांतुस्ती होमलैंड के निर्माण से अपार्थिड नीति की को और बढ़ावा मिला। कानूनन अश्वेत अफ्रीकों का स्तर बदलकर उनके आधिकारिक निवास का क्षेत्र होमलैंड हो गया, चाहे वे वहां कभी न गए हों। 1979 में विभिन्न आदिवासी कबीलों के लिए 10 बांतुस्तों का निर्माण किया गया। उनका संपूर्ण क्षेत्रफल 157,391 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 13% है। इनमें से अधिकतर कबीले देश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं, अत्यंत गरीब हैं तथा अपनी आजीविका हेतु दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर निर्भर हैं। वैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने इन्हें स्वीकृति प्रदान नहीं की है। अपार्थीड की इस भेदभावपूर्ण नीति के विरुद्ध पिछले 37 वर्षों से कई अश्वेत संगठनों का संघर्ष जारी है। प्रमुख संगठन अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ANC, पैन अफ्रीकी कांग्रेस तथा ब्लैक कॉन्शसनेस मूवमेंट BCM हैं। इनमें अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस अपने 73 वर्षीय प्राचीन इतिहास से समृद्ध होने से तथा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का समर्थन प्राप्त होने से सर्वाधिक प्रभावशाली है। इसका कहना है कि क्रांतिकारी परिवर्तन की राजनीति का लक्ष्य सामान्य जन के हाथ में शासन की बागडोर रखना है। ऐसी व्यूहरचना करनी है कि जन संघर्ष द्वारा अपार्थीड प्रणाली को पंगु एवं शासन के अयोग्य सिद्ध करके मिश्रित नृ जातीय जातीयता विहीन राजनीतिक समाज का निर्माण किया जा सके। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की सक्रियता देखकर ही दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने मार्च 1984 में मोजाम्बिक से एनकोमती संधि की, जिसके अनुसार राष्ट्रीय सीमा के बाहर स्थित अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की संघर्ष क्षमता कुंठित हो जाए। परिणाम स्वरूप विपरीत हुआ। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का संघर्ष और अधिक शक्ति एवं तीव्रता के से सामने आया। इंखाता आंदोलन के नेता श्री बूथेलेजी ने ग्रैंड इंडाबा नामक अश्वेतों, श्वेतों एवं भारतीयों के 40 संगठनों की गोष्ठी में नेटाल ऑप्शन नामक एक प्रस्ताव रखा, जिसमें प्रांत के 3 प्रमुख समुदायों, श्वेत, अश्वेत तथा भारतीयों द्वारा चुनी गई क्षेत्रीय असेंबली तथा सरकार के आधार पर केवल एक आर्थिक प्रदेश के निर्माण का सुझाव प्रस्तुत किया, परंतु अफ्रीकी सरकार ने इसे अपार्थीड नीति का विरोधी तथा स्वयं की पूर्व निर्मित योजना की मात्र प्रति बताकर इस प्रस्ताव का खंडन कर दिया। लिसोथो। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने दक्षिण अफ्रीका द्वारा चारों ओर से घिरे लिसोथो में 19 वर्ष पुरानी 72 वर्षीय लिबुआ जोनाथन की सरकार को 20 जनवरी 1986 को अफ्रीकियों द्वारा समर्थित सेना द्वारा शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन के माध्यम से गिराकर 1970 में वर्तमान संघर्ष एवं विभ्रम के अंधेरे में वापस धकेल दिया गया। दुख की बात तो यह है कि 1970 के बाद जैसे ही चीफ जोनाथन ने अपना राजनीतिक आधार मजबूत करके अपार्थीड के विरुद्ध अपना दृढ़ एवं स्वतंत्र कदम आगे बढ़ाते हुए प्रजातंत्रीय ढंग से अपनी सरकार चलाना चाहा, उन्हें क्यूबा एवं उत्तरी कोरिया से राजनीतिक संबंध स्थापित करने तथा दक्षिण अफ्रीका से निकाले गए राजनीतिक नेताओं को शरण देकर सरकार को अस्थिर बनाने के प्रयास का आरोप लगाकर लिसोथो लिबरेशन आर्मी द्वारा ही अधपस्त करा दिया गया। दक्षिणी अफ्रीकी सरकार के अनुसार लिसोथो के विदेशी व्यापार पर लगाया गया आर्थिक नियंत्रण इसी शर्त पर समाप्त होना था। बोत्सवाना, लिसोथो के बाद बोत्सवाना की बारी आई। दक्षिणी अफ्रीकी सरकार ने बोत्सवाना पर भी लगभग उन्हीं आरोपों पर कि यह अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के क्रांतिकारियों को संघर्ष हेतु प्रश्रय दे रहा है, 1 जुलाई 1986 को आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। इस दिशा में भारतीय प्रधानमंत्री ने 14 से 17 मई 1986 को जाम्बिया, जिम्बाब्वे, अंगोला तथा तंजानिया की यात्रा के दौरान वहां के नेताओं से मिलकर वास्तविक परिस्थिति पर विचार विमर्श किया एवं प्रदेश में भीषण रक्तपात के लिए उत्तरदायी दक्षिणी अफ्रीका पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की संस्तुति की। पर 16 जून 1986 को पेरिस में दक्षिणी अफ्रीका पर प्रतिबंध लगाने हेतु बुलाई गई विश्व गोष्ठी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा ब्रिटेन ने वीटो शक्ति प्रयोग कर गुटनिरपेक्ष देशों के इस प्रयास को व्यर्थ कर दिया। विश्व जनमत देखकर बाद में 27 जून 1986 को संयुक्त राज्य अमेरिकी प्रशासन ने दक्षिणी अफ्रीका की श्वेत अल्पसंख्यक सरकार के प्रति अपनी नीति पर तथा विपक्षी अश्वेत बहुसंख्यकों से अपने संबंध सुधारने की दिशा में पुनर्विचार किया। पर अफ्रीकी सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, ठीक ठीक भविष्यवाणी कर पाना कठिन है। वैसे बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय निकाय, कंपनियां आदि यहां से अपना व्यापार समेट रही हैं, जो कि दक्षिणी अफ्रीका के निवासियों के उज्जवल भविष्य का संकेतक है। दक्षिणी पूर्वी एशिया, सिंगापुर। सिंगापुर का आर्थिक एवं भूकूट योजनात्मक महत्व अत्यधिक है। वास्तव में यह एक समुद्रिक सामरिक बंदरगाह है जिसका उपयोग अमेरिकी वायुयान प्रशांत महासागर के अड्डों तथा थाईलैंड से उड़कर काकस द्वीप समूह तथा डिगो गार्सिया तक जाने में करते हैं। इसका उपयोग P3 ओरियान टोहक यान भी कर रहे हैं, जिनको यहाँ पर ईंधन आपूर्ति की भी सुविधा उपलब्ध है। सिंगापुर अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी ताकतों के साथ सैनिक अभ्यास भी करता रहा है। ऐसा ही एक अभ्यास सन 1982 में सिंगापुर की नौसेना तथा वायुसेना ने दक्षिणी चीन सागर में अमेरिकी 7वें बेड़े के साथ मिलकर किया था, जिसमें विमानवाही पोत मिडवे भी उपस्थित था। वस्तुतः सिंगापुर को भय है कि कहीं वियतनाम उस पर हावी न हो जाए। इंडोनेशिया अमेरिकोन्मुखी संगठन एशियान का सदस्य राष्ट्र है। अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच सहयोग बढ़ रहा है। अमेरिका इंडोनेशिया की सेनाओं हेतु साज सामान भी उपलब्ध करा रहा है। भूखंडों तथा द्वीपों में सामरिक गतिविधियां, मॉरिशस। जैसा कि बताया जा चुका है, मॉरिशस की अधीनता में द्वीपों के 3 समूह रोड्रिगेज, अगालेगा तथा सेंट ब्रेंडन आते हैं। चौथा अधीन राज्य चागोस द्वीप श्रृंखला नवंबर 1965 में मॉरिशस की स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश उपनिवेशवादी प्रशासन ने अलग करके ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी में सम्मिलित कर लिया गया। यहाँ की 1200 स्थानीय जनसंख्या मॉरिशस में स्थानांतरित कर दी गई तथा मॉरिशस सरकार को निष्कासितों के पुनर्वास तथा हर्जाने के रूप में 6.5 लाख पाउंड प्रदान किया गया। 30 दिसंबर 1966 को हुए समझौते के अनुसार ब्रिटेन ने इसे संयुक्त राज्य को सुरक्षा सुविधाएं विकसित करने के लिए 50 वर्ष के लिए पट्टे पर दे दिया। संयुक्त राज्य ने डिगो गार्सिया में एक नौसैनिक संचार केंद्र स्थापित किया है तथा इसकी अड्डे की सुविधाएं और बढ़ाई जा रही हैं। जून 1976 में ससल्स की स्वतंत्रता के साथ ब्रिटेन ने बियॉट के 4 द्वीपों के समूह में से 3 ससल्स को वापस कर दिया तथा चौथा चागोस रख लिया, जबकि आशा यह की जा रही थी कि हिंद महासागर में बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वंदिता को देखते हुए ब्रिटेन बियॉट भंग कर देगा, परंतु ऐसा न हुआ। मॉरिशस ने चागोस द्वीप श्रृंखला वापस पाने के लिए अंग्रेजों के सम्मुख यह मामला रखा कि 1967 में ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया तथा सुदूर पूर्व के देशों में यातायात के लिए इसे अपने अधिकार में रखा था तथा मॉरिशस का डिगो गार्सिया पर सिविक राइट है। मॉरिशस अपने इस दावे की सफलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मांग रहा है। जुलाई 1980 में फ्रीटाउन सियरा लियोन के ओएयू शीर्ष सम्मेलन में डिगो गार्सिया अड्डे को अफ्रीका व हिंद महासागर के शांति क्षेत्र प्रस्ताव के लिए धमकी बताया गया तथा इसे मॉरिशस को बिना शर्त वापस करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। 11 दिसंबर 1980 को भारत तथा सोवियत संघ ने चागोस द्वीप श्रृंखला मॉरिशस को बिना शर्त वापस करने का सम्मिलित घोषणा पत्र जारी किया। फरवरी 1981 में नई दिल्ली में हुए निर्गुट देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में मॉरिशस के विदेश मंत्री ने उपनिवेशवादी शासकों द्वारा अलग किए गए डिगो गार्सिया की वापसी की मांग रखी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने 17 अप्रैल 1981 को दिल्ली दूरदर्शन को दिए गए एक साक्षात्कार में बताया कि मॉरिशस डिगो गार्सिया को तब तक नहीं वापस किया जा सकता जब तक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ब्रिटेन को इसकी आवश्यकता है। मॉरिशस ने मॉरिशस व मालागासी के मध्य स्थित ट्रामलिन द्वीप पर अपना अधिकार जताया है। 1954 में अंग्रेजों से आज्ञा लेकर फ्रांसीसियों ने इस पर अधिकार किया था। उन्होंने इस पर एक मौसम विज्ञान शाला स्थापित किया है। मॉरिशस ने सर्वप्रथम फ्रांस के सामरिक अड्डे के रूप के महत्व प्राप्त किया। बाद में ब्रिटेन ने वाकोस में एक नौसैनिक संचार स्टेशन स्थापित किया जो मार्च 1976 में बंद कर दिया गया। यह हिंद महासागर के पश्चिमी प्रदेश में अंग्रेजों की एक महत्वपूर्ण बाह्य चौकी थी। 1967 में स्वेज नहर बंद हो जाने से तथा केप मार के अधिकाधिक प्रयोग से पोर्ट लुइस के सागरीय क्रियाकलाप में अत्यधिक वृद्धि हो गई। इसकी विश्व के अत्यंत महत्वपूर्ण पेट्रोलियम मार्ग पर स्थिति तथा पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्रों से समीपता के कारण 1975 में स्वेज नहर खुलने के उपरांत भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है। अक्टूबर 1973 में पश्चिम एशिया के युद्ध के बाद के सभी प्रमुख नौसैनिक शक्तियों संयुक्त राज्य ब्रिटेन तथा फ्रांस सोवियत संघ ने इस प्रदेश में अपनी नौसेना के क्रियाकलाप में वृद्धि कर दिया है। अमेरिकनों ने मॉरिशस में वाकोवास में सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित किया है तथा इसके सैनिक वायुयानों को यहां उतरने की सुविधाएं प्राप्त हैं। जुलाई 1970 में सोवियत संघ की सहायता से मत्स्य उद्योग के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ जिसमें सोवियत मछली मारने वाले जलयानों को बंदरगाहों की सुविधा तथा इसके नाविकों को वायुयानों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे प्लेसा पर उतरने की सुविधा प्रदान की गई है, जिसका कि ब्रिटेन ने स्वागत नहीं किया है। सोवियतों ने हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय जल में स्थित कुछ द्वीपों के समीप लंगर घाटों का विकास कर लिया है जो पश्चिम की दृष्टि में बर्थिंग स्टेशन या सचल अड्डे हैं तथा जहां सोवियत नौसैनिक चलयानों की संपूर्ति हो सकती है। भारत ने मॉरिशस को अमर नामक एक पेट्रोल बोट उपहार स्वरूप प्रदान किया है। संयुक्त राज्य, सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा फ्रांस के नौसैनिक चलयानों की भांति भारत के नौसैनिक चलयान भी मॉरिशस को शुभकामना प्रदान करने हेतु यात्रा किया करते हैं।